नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करेंगी। वित्त मंत्री ये समीक्षा वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक में 15 सितंबर को करेंगी। सूत्रों ने बताया कि मुंबई में आयोजित होने वाली इस उच्च स्तरीय बैठक में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास समेत सभी वित्तीय क्षेत्र के नियामक शामिल होंगे। यह FSDC की 26वीं बैठक है। FSDC केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में क्षेत्रीय नियामकों का शीर्ष निकाय है। सूत्रों के अनुसार बैठक में मौजूद वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति और वित्तीय स्थिरता के मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। इसमें बैंकिंग और NBFC से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि परिषद वित्तीय क्षेत्र के विकास और व्यापक आर्थिक स्थिरता के साथ समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल करने के लिए जरूरी उपायों पर भी चर्चा करेगी। RBI के अनुमान के मुताबिक देश का GDP चालू वित्त वर्ष में 7.2% की दर से बढ़ेगा, जबकि खुदरा महंगाई दर 6.7% पर रह सकती है। मल्टीप्लेक्स श्रृंखला आईनॉक्स लेजर की चालू वित्त वर्ष 2022-23 के बाद 834 अतिरिक्त स्क्रीन जोड़ने की योजना है। आईनॉक्स लेजर की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक उसकी कुल स्क्रीन संख्या 752 तक पहुंच जाएगी। कंपनी 30 जून 2022 तक भारत के 73 शहरों में 292 स्क्रीन का संचालन कर रही थी। आईनॉक्स लेजर ने कहा कि हम अपनी विस्तार रणनीति को आगे बढ़ाने को लेकर आश्वस्त हैं। हम अधिक प्रयासों के साथ देश भर में स्क्रीन की संख्या का विस्तार करने और अपने बहीखाते को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में जब COVID-19 महामारी संबंधित प्रतिबंधों के कारण ये उद्योग प्रभावित हुआ था, तब भी कंपनी ने सबसे अधिक स्क्रीन जोड़ी थी। इंडोनेशिया के राजदूत इना एच कृष्णमूर्ति ने बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने व्यापार, संस्कृति और खेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ाने पर व्यापक चर्चा की। कृष्णमूर्ति ने हरियाणा को इंडोनेशिया के दवा, दैनिक इस्तेमाल के सामान, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस मौके पर खट्टर ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों से घनिष्ठ सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध हैं। राज्य सरकार ने एक बयान में कहा है कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और इंडोनेशिया के राजदूत ने हरियाणा और इंडोनेशिया के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इंडोनेशिया को कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और सूरजकुंड में आयोजित होने वाले सूरज शिल्प मेले में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने बुधवार को कहा कि सरकार अपने गठबंधन सहयोगियों द्वारा अहम हितधारकों से विचार विमर्श करने के बाद भारत से वस्तुओं के आयात के बारे में सोचेगी। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से हालात खराब हैं और खाद्य वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। भारत से खाद्य वस्तुओं के आयात के बारे में वित्त मंत्री ने अपने विचार पहली बार सोमवार को जताए थे। इस्माइल ने ट्वीट किया, एक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने सरकार से संपर्क करके जमीनी सीमा के रास्ते भारत से खाद्य वस्तुएं लाने की इजाजत मांगी है। आयात को मंजूरी देने के बाबत फैसला आपूर्ति की कमी को देखते हुए लिया जाएगा। इससे पहले गठबंधन सहयोगियों और महत्वपूर्ण हितधारकों से बात की जाएगी। इस बीच पाकिस्तान ने प्याज और टमाटर ईरान और अफगानिस्तान से मंगवाने का फैसला किया है। इससे पहले इस्माइल ने इस हफ्ते ऐसा संकेत दिया था कि मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए सरकार भारत से आयात की इजाजत दे सकती है। हालांकि ऐसी संभावना कम ही है कि गठबंधन सरकार ऐसा कोई कदम उठा पाएगी। KP एनर्जी को पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए आदित्य बिरला समूह से 222 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। कंपनी ने बुधवार को शेयर बाजार को बताया। आदित्य बिरला समूह के लिए KP एनर्जी द्वारा स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं का कुल मूल्य 222 करोड़ रुपए है। ये परियोजनाएं मार्च 2023 में चालू होंगी। KP एनर्जी ने कहा है कि उसने गुजरात हाइब्रिड बिजली नीति 2018 के तहत गुजरात के भावनगर, भुंगर और फुलसर साइट पर पवन ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए आदित्य बिरला समूह के साथ समझौता किया है। नियामकीय सूचना के अनुसार संबंधित पक्षों ने आदित्य बिरला रिन्यूएबल्स सोलर लिमिटेड और ABREL सोलर पावर लिमिटेड के साथ परियोजना के विकास के लिए पक्के करार किए हैं। इन्हें परियोजनाओं के चरणबद्ध तरीके से विकास के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। NTPC को निजी नियोजन के आधार पर गैर परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करके 12,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी शेयरधारकों से मिल गई है। मंगलवार को हुई सालाना आम सभा में इस समाधान को मंजूरी मिली। AGM के नोटिस में बताया गया कि एक या अधिक किश्तों में जुटाई जाने वाली धनराशि का उपयोग पूंजीगत व्यय, कार्यशील पूंजी और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। कंपनी के निदेशक मंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी 29 जुलाई 2022 को दी थी। राष्ट्रीय राजधानी में शराब के निजी दुकानों की जगह अब दिल्ली सरकार के 300 से अधिक विक्रय केंद्र लेंगे। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि आबकारी नीति 2021-22 की जगह अब पुरानी व्यवस्था बहाल हो रही है। ये बदलाव बृहस्पतिवार से प्रभाव में आएगा। दिल्ली में करीब 250 निजी शराब विक्रेताओं के ठेके अभी संचालित हो रहे हैं, जिन्हें अभी वापस ली जा चुकी आबकारी नीति 2021-22 के तहत लाइसेंस दिए गए थे। आबकारी अधिकारियों ने कहा कि अधिक ठेके के खुलने से सितंबर के पहले हफ्ते से शराब की आपूर्ति में सुधार आएगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।